interrupt this ad break to bring you a public kindness announcement. Put it back in the bay. You've seen it 1,000 times. Calf muscles quivering like a polar bear fresh out of the waxing salon as they heave 38 stacked trolleys up a broken escalator. It ain't easy being a trolley boy. And you're thinking of leaving your trolley next to your car? Go on, walk the extra 12 metres to the bay. Log your act of kindness at kindnessfactory.com and use the hashtag OneSmallAct.
Authorised by the Kindness Factory, Canberra.
मुख्य समाचारों में विश्व कप में हार के बावजूद ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल प्रशंसकों का उत्साह बरकरार. इस्लामिक स्टेट के कथित फाइटर को आतंकवाद से जुड़े आरोपों के लिए मेलबर्न प्रत्यर्पित किया गया और ऑस्ट्रेलियन साइक्लिस्ट मैथ्यू रिचर्डसन ने जीती लंदन में ट्रैक चैंपियनशिप लीग. नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ. फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना से 2-1 की नॉकआउट हार के बावजूद ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल प्रशंसकों का उत्साह बरकरार है और टीम के प्रति वो गर्वित हैं. पिछले 16 मैचों को बड़े पर्दे पर लाइव देखने के लिए देश भर में भारी भीड़ जमा हुई. ऑस्ट्रेलिया ने 2006 के बाद से पहली बार अंतिम चरण में जगह बनाई. क्रेग गुडविन ने विश्व कप के अपने दूसरे गोल से सोकरूज को दूसरे हाफ में कुछ उम्मीद तो दी, लेकिन ये अर्जेंटीना के कौशल के आगे कम पड़ गया. ऑस्ट्रेलियाई डिफेंसर अजीज बेच ने एसपीएस न्यूज को बताया कि टीम देश में प्रशंसकों के समर्थन के लिए आभारी है.
You know, we do it for them at the end of the day as much as we do it for ourselves. You know, that's what, you know, this sport does bring a nation together, and you've seen the footage just back home over the last few games. And yeah, look, just a big thank you to them. And yeah, look, we're just proud of, you know, we left everything out there. It's not just this game, but every single game that we've played.
Socceroos विश्व कप से बाहर हो चुके हैं और अर्जेंटीना अपनी जीत का जश्न मना रहा है. सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अपने आखिरी विश्व कप के लिए अपना सब कुछ लगा दिया. उन्होंने ही शुरुआती गोल दागा और ऑस्ट्रेलिया के एक मजबूत बचाव के सामने टीम पर दबाव बनाने की शुरुआत की. वैसे उनकी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर यह एक आसान जीत नहीं थी. सोकरूज ने दूसरे हाफ में एक गोल किया. मेसी का कहना है कि उन्हें राहत मिली है कि वे इस शारीरिक रूप से एक बहुत ही कठिन खेल को जीतकर आगे बढ़े हैं.
I am very happy for taking another step forward, achieving another object, another objective. It was a very strong and difficult match. We knew it was going to be this way. We had played very recently. We didn't have much time to rest up, and we were concerned as we knew it was going to be a very physical match, and they were very strong.
कथित इस्लामिक स्टेट फाइटर नील प्रकाश को मेलबर्न में प्रत्यर्पित किया गया है और आतंकवाद से संबंधित 6 अपराधों का आरोप लगाया गया है. श्री प्रकाश को रात की फ्लाइट से डार्विन से मेलबर्न लाया गया और ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने प्रकाश को मेलबर्न हवाई अड्डे के टर्मेक से ले जाते हुए फुटेज को जारी किया. श्री प्रकाश को पिछले सप्ताह तुर्की से प्रत्यर्पित किया गया था और अब एएफपी की विक्टोरियन ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म यूनिट द्वारा चार्ज किया जाएगा. फाइलिंग सुनवाई के लिए आज रविवार को दोपहर के तुरंत बाद मेलबर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष श्री प्रकाश के मामले की सुनवाई हुई. श्री प्रकाश ने जमानत के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है. अल्बनीसी सरकार इस सप्ताह राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में राज्य और क्षेत्र के नेताओं के लिए एक योजना का खुलासा करने की उम्मीद कर रही है, जिसका उद्देश्य घरेलू कोयले की कीमत की सीमा निर्धारित करके ऊर्जा बिलों को कम करना है. प्रधानमंत्री को राज्य और क्षेत्र के नेताओं के समर्थन की आवश्यकता होगी. हालांकि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स की सरकारें गैस और कोयले पर मूल्य कैप के जोखिमों की चेतावनी देते हुए सामने आई हैं. न्यू साउथ वेल्स के ऊर्जा मंत्री मैट कीन ने स्काई न्यूज को बताया कि ऊर्जा की कीमतों को कम करना फेडरल सरकार की जिम्मेदारी है.
The New South Wales government will do whatever it takes, working with the Commonwealth, to ensure that consumers are not penalised by the illegal war in Ukraine. That said, this is a national problem that requires a national solution. The Commonwealth government said that they would do whatever it takes to ease electricity price rises for families and businesses, and we expect them to do that. So it doesn't matter how they do that. They want to talk about capping a particular commodity. That's fine. There are many methods that they could use. I just want to see them come up with a solution and deliver on the promise they made to the Australian community.
Reserve Bank 2022 के लिए अपने अंतिम नकद दर final cash rate के निर्णय को सौंपने की तैयारी कर रही है. इसमें मोटे तौर पर कम से कम एक और बढ़ोतरी की उम्मीद है. एक और 25 आधार अंक की वृद्धि दर को 3.1% तक ले जाएगी, जिसका अर्थ होगा मॉर्गेज होल्डर्स के लिए एक और दबाव. एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल ब्लॉक्सम का कहना है कि तंग नौकरी बाजार और बढ़ती मुद्रास्फीति वर्ष के लिए एक और बढ़ोतरी देने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन संदेह है कि ये आखिरी होगा क्योंकि खुदरा आंकड़े उपभोक्ता मंदी के संकेत दिखा रहे हैं. सेंट्रल बैंक बोर्ड मंगलवार 6 दिसंबर को दिसंबर के लिए अपना निर्णय बताएगा. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि रूसी तेल पर लगाया गया मूल्य कैप पर्याप्त नहीं है और यूक्रेन में मास्को की कार्रवाई को रोकने के लिए बहुत ही कम काम करेगा या असर करेगा. रूस की तेल से होने वाली आय में कटौती करने के लिए G7 देशों के समूह और साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने कल शुक्रवार को इस कैप को मंजूरी दे दी. क्रेमलिन ने इस कदम को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि ये मुक्त बाजारों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन श्री जेलेंस्की का कहना है कि कैप से अभी भी रूस को एक वर्ष में 147 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेगा.
Логіка очевидна, якщо обмеження ціни російської нафти 60.
The logic is obvious. If the price of Russian oil is limited to $60 instead of, for example, $30, which was discussed, in particular, by Poland and the Baltic states, the Russian budget will receive about $100 billion a year. This money will go not only to the war and not only to further sponsorship by Russia of other terrorist regimes and organizations. This money will be used for further destabilization of those countries that are now trying to avoid serious decisions.
भारत के समाचार कि भारत दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आज सभी 250 वार्ड के लिए मतदान शुरू हो गया है और नतीजे 7 दिसंबर को सामने आएंगे. इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी, आम पार्टी और कांग्रेस के बीच में है. एमसीडी को 1958 में स्थापित किया गया था. 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान इसे 3 हिस्सों, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में बांट दिया गया था. हालांकि इस साल फिर से तीनों को एक कर दिया गया है. दिल्ली एमसीडी के चुनाव को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से मतदान वाले दिन 3,000 जवानों को तैयार किया गया है. दिल्ली पुलिस के साथ होमगार्ड और सीआरपीएफ के जवान भी सुरक्षा में तैनात हैं. शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है. और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की. ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 68 सेंट और भारत के 55.33 रूपये के बराबर है. खेल समाचारों में मैथ्यू रिचर्डसन ने साइकिलिंग ट्रैक चैंपियन लीग को जीत लिया है. रिचर्डसन लंदन के ओलंपिक वेलोड्रोम में 5वें और अंतिम राउंड को जीतने के लिए किसी तरह से डच प्रतिद्वंदी हैरी लेब्रेसन को हरा सकने में सफल हुए. लेब्रेसन को 2 अंकों से हराते हुए इस जीत ने रिचर्डसन को पुरुषों की स्प्रिंट प्रतियोगिता में पूरी श्रृंखला में भी जीत दिलाई. पूरे चैंपियन लीग में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैरी लेब्रेसन के सामने ऑस्ट्रेलियाई जीत ने साबित किया कि मैथ्यू रिचर्डसन 2024 पेरिस ओलंपिक से पहले ऑस्ट्रेलिया के नए ट्रैक स्प्लिंटर स्टार हैं. और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी सोमवार को पर्थ में मुख्यतः धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। मेलबर्न में बौछारें, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। होबार्ट में भी बौछारें हैं, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। कैनबरा में एक दो बौछारें। तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। सिडनी में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री। और डार्विन में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.